ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार दीपक रंजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में कहा कि जितने कृषि समझौते हुए हैं वो देश और किसानों के हित में हुए हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते देश और किसानों के हित सुरक्षित हैं। सदन में वर्ष 2026-27 के लिए कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए श्री चौहान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस विषय पर मुख्य विपक्षी दल का रुख हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जैसा है। कृषि मंत्री के जवाब के बाद सदन ने वर्ष 2026-27 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकार ने कृषि लागत पर 50% के फार्मूले के आधार पर एमएसपी देने से इंकार कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी घोषित की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं करके वहां के किसानों का नुकसान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र द्वारा निर्धारित 4 जिलों में पीएम धन धान्य योजना को लागू नहीं किया। श्री चौहान ने पंजाब में बाढ़ के बाद केंद्र की ओर से मुआवजा नहीं देने के कांग्रेस सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जितने प्रावधान तत्काल हो सकते थे केंद्र ने किए और किसी राज्य के साथ भेदभाव का कोई सवाल नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य वैश्विक अनिश्चितता के बीच देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका और आय बढ़ाना तथा पोषक आहार जनता को मिले ये सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्राकृतिक खेती मिशन प्रारंभ किया ताकि धरती की उत्पादक क्षमता बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने भारत विस्तार नाम का एआई मंच बनाया है, जिसके माध्यम से किसान कोई समस्या होने पर अपनी फसल आदि की तस्वीर खींचकर उस पर डाल देंगे और उन्हें उनकी भाषा में ही समाधान मिल जाएगा। लोकसभा ने आज अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए बकाया अनुदान मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटिन के माध्यम से बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की बकाया मांगों को एक साथ बिना चर्चा के पारित कराने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन में आगामी वित्त वर्ष में भारत की संचित निधि से नियत राशि के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2026 सदन में रखा। सदन ने विनियोग विधेयक को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री तथा अन्य विपक्षी दलों के नेता उपस्थित थे। इस प्रक्रिया के साथ बजट पर सामान्य चर्चा और विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक को सदन की मंजूरी का चरण संपन्न हो गया है। इसके बाद वित्त विधेयक पारित होने के साथ बजट की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इससे पूर्व सदन में वर्ष 2026-27 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद अमरिंदर राजा वडिंग ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करनी चाहिए। वडिंग ने कहा कि किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई। उन्होंने मांग की कि जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने पंजाब में बाढ़ की तबाही का उल्लेख करते हुए दावा किया कि राज्य के किसानों को कोई राहत नहीं मिली। वडिंग ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार के बीच की लड़ाई का नुकसान किसानों को नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान अनिश्चितता की स्थिति से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए और किसान निधि को बढ़ाकर 20,000 रुपये सालाना किया जाए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रतिमा मंडल ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि में कमी करना किस तरह से उचित है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को अपने आप को किसान हितैषी कहने का अधिकार नहीं है। भाजपा सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि किसानों के बारे में बात करने से पहले कांग्रेस नेताओं को गांवों में जाकर देखना चाहिए कि किस तरह से प्रगति हुई है। रेड्डी ने कहा कि 2014 के बाद से कृषि क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई है। धान उत्पादन 60% बढ़ गया। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि बागवानी उत्पादन अनाज उत्पादन से अधिक हुआ है। उनके अनुसार कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी किसानों को मदद देने की नीति के कारण संभव हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय कृषि का बजट 22,000 करोड़ रुपए था, जो आज 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री रेड्डी ने कहा कि सभी फसलों पर एमएसपी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद डीजल का दाम नहीं बढ़ा और किसानों पर बोझ नहीं पड़ा, जो प्रधानमंत्री मोदी के कारण संभव हो पाया है। वर्ष 2026-27 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य जयप्रकाश ने कहा कि भाजपा नीत सरकार किसानों को भारत भाग्य विधाता उस वक्त मानती है जब उसे वोट की जरूरत होती है। जयप्रकाश ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इसकी गारंटी नहीं दी गई। शिवसेना के धैर्यशील संभाजी राव माने ने गन्ने से निर्मित एथेनॉल से हासिल होने वाले राजस्व में किसानों की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि कारखाने में जो चीनी बनती है वो कैडबरी और कोका कोला जैसी कंपनियों को तथा घरेलू उपयोग के लिए एक ही दर पर उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने मांग की कि आम लोगों के उपयोग वाली चीनी को अलग मूल्य श्रेणी में रखा जाए तथा कैडबरी और कोका कोला जैसी कंपनियों के लिए अलग और बढ़ी हुई दर निर्धारित की जाए। शिवसेना यूबीटी के संजय देशमुख ने विदर्भ में किसानों की आत्महत्या से संबंधित मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि विदर्भ के किसानों को आर्थिक पैकेज और आय की गारंटी की जरूरत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद पवार के मोहिते पाटिल धैर्यशील राज सिंह ने भी किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया। भाकपा माले लिबरेशन के सुदामा प्रसाद ने कहा कि खेती की लागत बढ़ रही है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कृषि उपज के दाम स्थिर हैं। जनता दल यूनाइटेड के देवेश चंद्र ठाकुर ने प्रखंड स्तर पर भी खाद्यान्नों के भंडारण की व्यवस्था और कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग की। चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल राजद के सुधाकर सिंह ने कहा कि एमएसपी पर बनाई गई समिति की अब तक अंतरिम रिपोर्ट भी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद भी समिति की रिपोर्ट नहीं आना यह दर्शाता है कि इसकी प्रगति शून्य है। सिंह ने भारत अमरीका समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे किसानों को नुकसान होगा। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कहा कि सरकार ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात कही थी, लेकिन आज तक समिति की रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में पिछले साल बाढ़ से हुए नुकसान के बाद राज्य और केंद्र की सरकार ने प्रभावित किसानों का साथ नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खामियां होने का दावा करते हुए सरकार से इन्हें दुरुस्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार को खेतिहर मजदूरों के बारे में भी योजनाएं बनानी चाहिए। माकपा के अमरा राम ने आरोप लगाया कि देश में किसानों की आत्महत्या की घटना के लिए 1990 से लेकर आज तक लागू की गई किसान विरोधी नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार से भारत अमरीका व्यापार समझौते पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा कराने का आग्रह किया और कहा कि कहीं ये ट्रेड डील ब्लंडर डील न साबित हो जाए और भारतीय किसानों को तबाह न कर दे। डिंपल यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की भूमिका बनाई जा रही है, लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े कॉरपोरेट का कर्ज माफ किया गया तो किसान का कर्ज भी पूरी तरह माफ किया जाना चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा ने 2014 के चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में जनता से वादा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन के लिए एमएसपी सुनिश्चित करें ताकि किसान आत्मनिर्भर बने। चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता रद्द होना चाहिए। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। राज्यसभा में आज नियमित कामकाज नहीं हुआ और सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को विदाई देते हुए उम्मीद जताई कि ये सदस्य सदन से जाने के बावजूद सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 59 सांसदों को विदाई देते हुए संसद को एक खुला विश्वविद्यालय करार दिया। प्रधानमंत्री ने सेवानिवृत्त हो रहे सांसदों से राष्ट्र की विकास गाथा में योगदान जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कुछ सदस्य पुनः सदन में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। ऐसे सदस्यों को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि राजनीति में फुल स्टॉप जैसी कोई चीज नहीं होती, भविष्य आपका भी इंतजार कर रहा है और आपका अनुभव हमेशा हमारे राष्ट्रीय जीवन का स्थायी हिस्सा रहेगा। श्री मोदी ने तीन वरिष्ठ नेताओं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार प्रमुख शरद पवार की खास तौर पर सराहना की और उन्हें ऐसा स्तंभ बताया जिन्होंने अपने जीवन का आधे से अधिक समय संसदीय कार्यवाही में बिताया है। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए कहा कि 20 राज्यों से 9 महिलाओं सहित कुल 59 सदस्य अप्रैल से जुलाई के बीच सेवानिवृत्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त होना राज्यसभा की कार्यप्रणाली में निरंतरता सुनिश्चित करता है और नए सदस्यों को शामिल होने का अवसर भी देता है। राधाकृष्णन ने कहा कि देवेगौड़ा एक प्रतिष्ठित नेता हैं जिनकी उपस्थिति ने सदन को गरिमा प्रदान की। उन्होंने खड़गे को सदन के लोकतांत्रिक कार्य में महत्वपूर्ण आवाज करार दिया। हरिवंश के बारे में राधाकृष्णन ने कहा कि उन्होंने सदन की कार्यवाही का संचालन गरिमा, निष्पक्षता और गहन जिम्मेदारी के साथ किया। उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की कार्यवाही के नियमों की समय सीमा पर समीक्षा की आवश्यकता बताई। खड़गे ने कहा कि सदन में अधिक बैठकें होनी चाहिए ताकि सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा सके। उन्होंने विधेयक तैयार करने में विपक्षी सदस्यों की अधिक भागीदारी की वकालत करते हुए कहा कि यदि इसमें बाधा आए तो संसद की संस्थागत शक्ति कमजोर होगी। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला था तब पूरा कामकाज कागजों पर दर्ज होता था, लेकिन आज पूरा काम डिजिटल आधारित है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य नई भूमिकाओं की ओर बढ़ रहे हैं। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने इस क्षण को जीवन का एक मोड़ बताया और कहा कि सेवानिवृत्त सदस्य भविष्य में भी सार्वजनिक जीवन में योगदान देंगे। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने विदाई के पलों को दुखद और भावनात्मक बताया। उन्होंने संसदीय समितियों में बने निजी संबंधों को याद करते हुए कहा कि पूर्व सदस्यों को पहले की तरह राज्यसभा की आंतरिक लॉबी तक पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए। बीजू जनता दल के सदस्य सस्मित पात्रा ने कहा कि ऐसे अवसर दिखाते हैं कि राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद सदस्य साझा सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिबद्धता से जुड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद सदस्य प्रेमचंद गुप्ता ने पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष को याद किया और कहा कि वहां कोई भेदभाव नहीं था तथा दोनों पक्षों के लोग एक साथ बैठकर अपने सुख दुख पर बात करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई है। अन्नाद्रमुक सदस्य एम तम्बिदुरई ने कहा कि उच्च सदन में संसद की सर्वोत्तम प्रवृत्तियों को आसानी से देखा जा सकता है और उन्हें हमेशा लगा कि ये उनका दूसरा घर है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास ने कहा कि इस सदन से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों ने यहां चर्चा में भाग लेकर देश की विविधता का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बातचीत से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और विधेयकों को जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। बीआरएस सदस्य केआर सुरेश रेड्डी ने कहा कि सदन की कार्यवाही के संचालन में यहां के हर व्यक्ति की अहम भूमिका होती है। उच्च सदन से सेवानिवृत्त हो रहे कांग्रेस की रजनी अशोक राव पाटिल ने अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा कि विधेयकों पर चर्चा के दौरान और संसदीय समितियों की बैठकों में उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ सीखा। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने कहा कि इस सदन के अनुभव उनकी अमूल्य पूंजी हैं। भाजपा के रामेश्वर तेली ने कहा कि उन्होंने जीवन भर ये नहीं सोचा कि उन्हें संसद में आने का मौका मिलेगा। इसी दल की किरण चौधरी ने कहा कि उनका कार्यकाल भले ही बहुत सीमित रहा हो, किंतु उन्हें यहां काफी कुछ सीखने का मौका मिला और इन अनुभवों से काफी समृद्ध हुई हैं। भाजपा के राम भाई मुकारिया ने कहा कि इस सदन में आने के बाद उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।